Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhakti Shakti Shanta Vasalmi Matao Snimai Veno Aap Sarovand. Taittiriya Upanishad ka avlamban karte hue. उपनिषद क्रतो शांति पाठ को लेकर के चर्चा की जा रही है, जिसमें अभी ये बतलाया कि जो एक एक गुण विशेष के अधिष्ठाता जो देवता, वह देवता हमारे लिए हमारे दुर्तों को दूर करते हुए और हमारे मार्ग को प्रशस्त बनाते हुए हमें वह बल प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना की गई। और अंत में कह दिया गया कि वायु जो है वही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, वही ऋत ब्रह्म है, वही सत ब्रह्म है, ऐसा संकेत करते हुए अंत में उपसंहार करते हुए कहा कि वह मुझ वक्ता की, मुझ श्रोता की रक्षा करे। अर्थात जो वक्ता की रक्षा होगी और श्रोता की रक्षा होगी तो क्या रक्षा होगी, मने श्रवण करने की सामर्थ्य वह हमें प्रदान करे। श्रवण तो हम सभी करते हैं, लेकिन श्रवण की सामर्थ्य, श्रवण का बल क्या है? तो श्रवण वास्तव में वह कहलाता है जहां पूर्व और परा का युक्तियों पूर्वक हम ग्रहण करते हैं, उसी का नाम है श्रवण। पूर्व पर दोनों का हम जो है समन्वय करते हुए और जो ग्रहण करते हैं तो ऐसी ग्राहक शक्ति हमें वह प्रदान करे, यही उसकी रक्षा। और वक्ता के द्वारा पूर्व और पर का जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य को वह कथन करने में समर्थ हो, ये जो है वक्ता की रक्षा है। इसलिए कहा कि उस वक्ता की रक्षा करे और मुझ श्रोता की रक्षा करे। अर्थात वक्ता हमको तात्पर्य जो है वो समझा सके, वो कहने में समर्थ हो और हम उसके तात्पर्य को ग्रहण करने में समर्थ। क्यों? आप सुनते हो, वागर्था विवशम प्रत्यौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। क्या संकेत किया? वाक और अर्थ दोनों कैसे हैं? तो कहने लगे दोनों साथ रहने वाले हैं, मिले हुए हैं। तो वाणी और उस वाणी का जो अर्थ है वो दोनों साथ ही रहते हैं। हम अर्थ का जैसे ही अनुसंधान करते हैं तो वो वाणी आ जाती है, और वाणी को हम उच्चारण करते हैं तो उसके साथ में वो अर्थ भी रहता, दोनों की मिलित अवस्था है। लेकिन आगे संकेत किया, जैसे वाणी और अर्थ दोनों मिले हुए हैं, ठीक इसी प्रकार से इस जगत का जो रचयिता, स्थितिकर्ता, प्रलयकर्ता जो परमात्मा है, और केवल परमात्मा नाम उसे कब दिया? तो कहा जब वह माया से, प्रकृति से उपहित हुआ। तो जहां भी हम परमात्मा नाम लेते हैं, जहां भी हम ईश्वर नाम लेते हैं, या जहां जगत का कर्ता कहते हैं, या जगत का पालन कर्ता कहते हैं, या जगत को लय करने वाला कहते हैं, तो वहां पर प्रकृति से रहे तो वह होता नहीं। जैसे शब्द और अर्थ की मिलित अवस्था है, वैसे ही प्रकृति और उस आत्मा की मिलित अवस्था में ही ये क्रिया होती है। और जहां पर सृष्टि होना, स्थिति होना, लय होना, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर नियम का प्रवाह है, ये नियमतः चलते हैं। तो जितने भी संसार के अंतर्गत कर्तृत्व हैं, कर्म हैं, उन सब में यह एक नियम है, एक व्यवस्था है। और वो व्यवस्था, वो नियम कब होता है? तो तभी होता है जहां वाणी भी हो और अर्थ भी हो। और ऐसी वाणी हो जिसका कोई अर्थ न हो तो वहां क्या फलित होगा? वहां कोई भी नियम जो है चल पाएगा नहीं। ऐसे भी शब्द हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ ही नहीं। तो इसी प्रकार से यहां संकेत किया, वहां पर नियमबद्धता रहती है। अर्थात नियम का सीधा सा मतलब है कि जो भी यह अहम रूप से अपने को जानने वाला, मैं रूप से अपने को जानने वाला, जो भी यह जीव आदि शब्द से कहा जाने वाला प्राणी, वह जब अपने मैं को जानता है कि मैं हूं, तब क्या होता है? तभी उसमें किसी संकल्प या किसी इच्छा की स्थिति पैदा होती। जब तक मैं का बोध नहीं है तब तक किसी प्रकार की इच्छा होना संभव नहीं। तो मैं हूं एक तरह से ज्ञान हो गया, अपने को जानना। और जब मैं अपने को जानता हूं कि मैं हूं, अब किस रूप में जानता हूं वो बात पृथक है। तो मैं हूं और मैं जब हूं तो मेरे लिए चाहिए, जब मैं हूं तभी मेरे लिए चाहिए, तो कामना होती है। और कामना होकर के तद अनुकूल फिर प्रयत्न होता है। तो इसी को दर्शन शास्त्र भी जानात इच्छत करोति करके कह देता है। तो ये नियम चलता, और जब इस प्रकार से नियम के अनुसार वह चलता है, पहले ज्ञान, ज्ञान के बाद इच्छा, इच्छा के बाद कर्म प्रयत्न, और प्रयत्न के बाद कभी सफलता कभी असफलता, और सफलता असफलता से ही सुख और दुख, ये प्रवाह चलता है। इसी का नाम है संसार। ये क्या है? यही है जगत। तो इस जगत में ये नियम है, ये व्यवस्था, इस व्यवस्था के अनुसार ही ये सारा जगत चलायमान है, गतिमान है, प्रवाहमान है। तो अब यहां पर संकेत करते हैं कि यहां पर जैसे वाणी और अर्थ दोनों मिले हुए हैं, वैसे ही यहां पर आत्मा और प्रकृति दोनों मिले हुए। अब मिले हुए हैं तो इसका मतलब मिलना जहां हम समझते हैं तो वहां कैसा समझते हैं? जैसे दूध और पानी को मिला दिया तो क्या हो गया? दूध ही प्रतीत होता, एक ही रूप प्रतीत होता, उसके दो रूप प्रतीत नहीं। तो अब दूध पानी की तरह से वह नहीं मिला हुआ है, ध्यान रखना यह विशिष्टता है कि जैसे दूध और पानी का संयोग हुआ है उसमें संयोग रूप मिलना नहीं है। तब क्या है? तो उसको एक शब्द दिया दार्शनिकों ने, कहा तादात्म्य रूप मिलना है। क्या कहा? संबंध तो है लेकिन संबंध कैसा का? तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध नहीं। संयोग संबंध होगा तो वियोग संबंध, पृथकत्व आदि ये सब संबंध आ जाएंगे, लेकिन कहेंगे वहां संयोग संबंध नहीं है। कहा फिर कैसा संबंध है? तादात्म्य संबंध। कहा ये तादात्म्य संबंध क्या है? तो कहने लगे कि तादात्म्य संबंध का अर्थ होता है जहां दो पदार्थ होते हैं वहां तो संयोग होना सिद्ध हो जाता, लेकिन जहां दो पदार्थों की सत्ता नहीं, पदार्थ एक ही है, तो वहां संयोग संबंध तो बन सकता नहीं। लेकिन फिर भी उसमें कहने लगे संबंध है। तो वो कौन संबंध है? तो उसी को कहते हैं तादात्म्य संबंध। माने मिथ्याभूत जो संबंध की कल्पना, ऐसे उस संबंध को ही तादात्म्य संबंध कहते। और तादात्म्य संबंध हमेशा अभेद रूप से होता है। कैसे होता है? अभेद रूप से। अन्य संबंध संयोग रूप से होते हैं, उनकी प्रतीति भी हो जाती है, विशेषता यह होती है। हम बर्फ के दो टुकड़ों को लें और दोनों टुकड़ों की सत्ता अलग अलग है तो उनको हम जब मिलाते हैं तो एक तो दिखाई देते, लेकिन दोनों की सत्ता की प्रतीति भी हमें होती है, दो टुकड़े मिले हुए। लेकिन यहां पर दूसरी सत्ता है ही नहीं, और दूसरी सत्ता है ही नहीं इसलिए जो सब जब उसके
माने तादात्म्य रूप संबंध की कल्पना होती है, अभेद संबंध की कल्पना होती तो वो अभेद रूप से ही होती है, उनमें पृथकत्व का भान होता ही नहीं। इस प्रकार से प्रकृति और वह जिसे परमात्मा कहते वो दोनों भी क्या है, मिलित हैं। और जब दोनों मिलित हैं तो उसी को लेकर के ये सारा प्रवाह है, और उसके द्वारा होने वाला जितना भी कार्य है वो कैसा है, तो उसी को कहते हैं मायिक। क्या कहते हैं? मायिक। क्यों? इसके लिए बतलाया, सत्ता जब एक होती है, दूसरी सत्ता है ही नहीं, तो इच्छा किसके लिए होगी? वही दूसरा पदार्थ नहीं है तो दूसरे पदार्थ के न होने पर इच्छा कब होगी? कोई माप, कोई भी इच्छा वहां संभव नहीं। इच्छा तभी होती है जब दूसरा पदार्थ हम समझते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति समुद्री यात्रा कर रहा था और समुद्री यात्रा करते हुए वो जो है व्यापार करने कहीं गया बाहर, और व्यापार करके वापस आ रहा था। तो जब वापस आ रहा था तो व्यापार के द्वारा उसने प्राप्त किया जो धन, उसको अपने साथ में ला रहा था। अब जो है वो यात्रा करते हुए आ रहा था तो समुद्री यात्रा थी, समुद्र में आ रहा था तो अचानक जो है उसमें ऐसी लहरें आई जिससे हुआ क्या कि उसका जो पोत था, जहाज था, वो डूबने की स्थिति में आ गया। अब उसने देखा कि जहाज डूबा जा रहा तो धन भी जाएगा और मैं भी जाऊंगा। अब धन से भी अधिक प्रेम किससे होता? का अपने से, ये तो सिद्ध ही है। तो अब जो है यह उसने जब देखा तो अभी जहाज पूरा डूबा नहीं था लेकिन डूबने की श्रृंखला चालू हो गई थी। तब तक उसे एक टापू दिखाई दिया, उस समुद्र में एक टापू दिखाई दिया, और जब टापू दिखाई दिया तो वो उस जहाज से कूद पड़ा और तैर करके उस टापू पर पहुंच गया। जब टापू पर पहुंच गया तो उसने देखा कि अभी जहाज पूरा डूबा नहीं है, और जब टापू पर अपने को सुरक्षित देखा तो उसके अंतर्गत इच्छा हुई कि इसमें से कुछ तो जीवन के लिए बचा लिया जाए, इच्छा। तो वो पुनः फिर कूदा और फिर समुद्र में कूद करके तैरते हुए गया और तैर करके जहाज के पास पहुंचा। तो अब जितना भी जो कुछ ला सकता था, क्योंकि अधिक तो ला नहीं सकता था, तो उसने देखा कि भाई इसमें जो कीमती चीज हो उसे ले लिया जाए, तो वह स्वर्ण सलाका आदि होंगी उसमें। तो उसने एक दो स्वर्ण सलाका जो ले सकता था उतनी ली और जो है अपने सिर पर बांध ली, और सिर पर बांध करके तैरता हुआ पुणे टापू पर आ गया। इतने में जहाज भी डूब गया। अब वो जो टापू पर खड़ा हुआ था विचार करने लगा कि ये स्वर सलाकाएं हैं, इनका इतना मूल्य है। ये सब विचार चलने लगा उसके जीवन, और जब विचार चलने लगा तो विचार करते करते फिर उसकी नजर जो है गई, पहले तो विचार किया बाजार में इतना मूल्य है, इतने भाव चल रहा तो इतने मूल्य का हो जाएगा, चलो गया सो गया, लेकिन इतना बच गया तो जीवन तो कट ही जाए, ऐसा विचार करने लगा। लेकिन ये विचार कर ही रहा था तब तक उसकी टापू पर दृष्टि गई। टापू को देखा तो समुद्र के अंतर्गत वह टापू था, चारों तरफ जल ही जल था, और टापू पर भी कोई भी वनस्पति बालू के सिवाय और कुछ था ही नहीं। जब बालू के सिवाय न कोई वनस्पति थी, यहां तक पक्षी आदि भी नहीं। और जब उसने देखा तो फिर विचार करने लगा कि इस स्वर्ण सलाखा का मूल्य कहां है? बाजार में है, जहां कोई हमसे भिन्न है वहां मूल्य है, लेकिन यहां तो हमारे और स्वर्ण सलाखा के अलावा दूसरा कोई है, तो इस स्वर्ण सलाखा का यह मूल्य क्या है? कम से कम इस बालुकामय टापू ने हमको सुरक्षा दी, लेकिन ये स्वर्ण की सलाका तो वो भी करने में समर्थ नहीं, तब इसकी कोई कीमत नहीं। इसकी कीमत तो कहां है, कहा बाजार में, लेकिन यहां बाजार तो जाने दो, यहां कोई प्राणी है ही नहीं बालू के सिवाय, तब तो इसकी कीमत इस बालू के बराबर भी नहीं। बालू ने कम से कम हमें आश्रय दिया है, लेकिन इसकी कीमत बालू के बराबर भी नहीं। और जब ऐसा समझ में आया तो उसने उन सुवर्ण की सलाकाओं को समुद्र में फेंक दिया। क्या किया, कहा इनकी कीमत तो इस वालू की बराबर भी नहीं है, और जब वालू के बराबर भी इनकी कीमत नहीं है तो इसको रखने का लाभ भी क्या। और उसने सुवर्ण की सलाकाओं को फेंक दिया, केवल अपना तो अपने में ही वो मस्त हो गया। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है मैं हूं, जहां पर यह शब्द आता है तो वहीं तू खड़ा हो जाता। तू शब्द जहां आता है तो मैं स्वाभाविक रूप से खड़ा हो जाता। मैं और तू ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं। तू के बगैर मैं की सिद्धि नहीं है, मैं किसको लेकर के कहूंगी, वही सामने वाले को लेकर के ही तो कहोगे मैं हूं, और अपने को लेकर के ही कहोगे तू है, और जब कोई दूसरा है ही नहीं तो किसे मैं कहोगे, किसे तू कहोगे। और जहां पर ऐसी स्थिति होती है तो फिर क्या हो गया, कहने लगे वहां जब मैं ही नहीं रहा, और मैं ही नहीं रहा तो वहां इच्छा भी कैसे, इच्छा का उदय भी नहीं होता। तो इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य तुमने इसलिए मैं को लेकर के कह दिया, प्रक्रिया जो है कि मैं जहां होता है वहीं इच्छा का उदय होता है, इच्छा का उदय होता है वहां प्रयत्न होता है, और प्रयत्न के अनुसार सफलता असफलता होती है, सफलता असफलता के अनुसार हमें हर्ष और विषाद होता है, सुख और दुख होता है। ये प्रक्रिया, ये एक नियम है, नियम को लिख। अब ये जो संसार के अंतर्गत जो भी अवधारणा है तो वहां पर संकेत कर दिया कि संसार का जो मूल है, संसार का जो कारण है वो कैसा है, का मिलित है, तादात्म्य संबंध वाला है। माने वहां पर प्रकृति और वह परमात्मा दोनों की मिलित अवस्था, तादात्म्य रूप से मिलित अवस्था। अब प्रकृति नाम दो, भ्रम नाम दो, भूल नाम दो, माया नाम दो, ये सब क्या है, या भ्रांति नाम दो, ये सब नाम तो हैं लेकिन एक ही वस्तु के नाम है, ये अलग अलग नहीं। चाहे उसे अज्ञान कह दो, माया कह दो, प्रकृति कह दो, भ्रांति कह दो, भ्रम कह दो, कल्पना कह दो, ये सब क्या है, ये एक ही वस्तु के नाम। और इससे जब मिलित होना, और कौन मिलित हुआ, तो कहने लगे आत्मा। अब ये मिलित होना कैसे है? तो ध्यान देना थोड़ा, अज्ञान और ज्ञान दोनों कैसे हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और अज्ञान उसका विपरीत, तो दोनों कैसे हैं, विरोधी है। दोनों कैसे हैं, विरोधी है। जैसे प्रकाश और अंधकार दोनों कैसे हैं, का विरोधी, और प्रकाश और अंधकार को मिलाना चाहो तो मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। प्रकाश और अंधकार दोनों मिलते नहीं, दोनों में दूरी है, लेकिन दूरी होते हुए भी उनमें मिलना है। अब दूरी होते हुए मिलना कैसा, तो यही विलक्षणता है। तो वास्तव में ये कभी मिल नहीं सकते, विरोधी धर्म है, लेकिन फिर भी इनके अंतर्गत मिलने की कल्पना की गई। अब कहो कैसे मिलना, तो इसके लिए उदाहरण देते हो ना, कहा किसी को दो चंद्रमा दिखाई देते, तो दो चंद्रमा दिखाई क्यों देते, कहा आंख पर अंगुली लगा ली है तो दो चंद्रमा दिखाई देने लगे। तो इसका मतलब आंख देख तो रही है, लेकिन देखते हुए भी क्या देखने लगी, जो जैसा नहीं है वैसा है। चंद्रमा एक है लेकिन एक होते हुए उसने क्या देख लिया, कहा दो देख लिए। और यही स्थिति है यहां। अज्ञान जो है उस ज्ञान को जो है आवृत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी क्या कह देते हैं, कहा आवृतम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंत्य जंतवा, ये कह देते हो। तो अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हो गया, और ज्ञान आवृत हो गया कहा तो कहा तेन मुह्यंत जंतवा, उसके द्वारा जहां आवृतपना है ज्ञान का वहां पर क्या होगा, कहा जंतवा मुह्यंती, वहां पर जंतु जो हैं वो क्या है, मोह को ही प्राप्त होंगे। और मोह का मतलब क्या है, विपरीत बुद्धि। मोह वैचित्य अर्थ में धातु से ही मोह शब्द बनता, मोह शब्द बनता, मूढ़ शब्द बनता, जिसका अर्थ होता है वैचित्र देखना, विपरीत देखना। तो जहां पर ये स्थिति है तो वहां पर क्या है, तो वहीं पर कह दिया तेन मुह्यंत जंतवा। कौन मोहित होते हैं, कौन विपरीत देखते हैं, तो क्या नाम दिया, जंतवा। जंतु किसे कहते, जायते इति जंतु, जिसका जन्म हो, और जिसका जन्म होगा तो उसकी मृत्यु भी होगी, ये निश्चित नियम है। तो अब जो है वहां तक तब तक वो जंतु है, ये संकेत कर दिया। और क्यों जंतु है, तो कहा जब तक अज्ञान है, अज्ञान से आवृत। लेकिन ये अज्ञान की आवृतता कह तो दी जाती है समझाने के लिए, लेकिन किस प्रकार की है, तो ठीक जैसे वो चंद्रमा दो नहीं है लेकिन उसे दो करके देख रहा है ना। तो क्यों देख रहा है, तो वहां अज्ञान जो है ढका हुआ नहीं है, वो ज्ञान ढका हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी किसी एक देश विशेष में, एकांश में क्या है, उस अंगुली का आ जाना हो गया। उस उतने से ही उसने क्या है, विपरीत देखना शुरू कर दिया। तो अज्ञान की वास्तव में कोई सत्ता भी नहीं, अज्ञान को क्या माना जाता, अंधकार की भी कोई सत्ता नहीं कि है। कुछ लोग तो मानते हैं, नीलम है तमस चलती नैयाह कादी, कह देते कि अंधकार की भी सत्ता। लेकिन आकाश में जैसे नीलिमा होती, नीलिमा की जैसे आकाश में सत्ता नहीं, वैसे ही लेकिन प्रतीति होती, प्रतीयमान है, लेकिन वास्तव में नीलिमा की कोई सत्ता आकाश में नहीं। ये सब जानते हो, इतना तो समझ लेते हो, क्योंकि आकाश अवकाश रूप है, आकाश शून्य है, रूप से रहत है, और जहां पर रूप नहीं होगा, आकार नहीं होगा, तो वहां कोई रंग चढ़ ही नहीं। तो आकाश में जो नीलिमा की प्रतीति होती है, तो तलमलिनताम इत्यादि करके कह दिया है, बाला तलमलिनताम अध्यस्यन्ति, वहां जो बाल शब्द से कह दिया, ज्ञानी लोग जो है तल की मलिनता का ही अध्यास उसमें कर लेते। अध्यास का मतलब यह है तस्मिन तदबुद्धि, जो जैसा नहीं है उसे वैसा देख लेना, ये अध्यास है। तो अब यहां पर संकेत कर रहे हैं कि है नहीं वैसा, लेकिन वैसा समझ लेना, इसी का नाम है अज्ञान। तो अज्ञान की सत्ता है, या यूं कह दें एक अंश विशेष की विस्मृति का नाम ही क्या है, अज्ञान। अब क्या है विस्मृति, तो वस्तु तो है, लेकिन उस वस्तु की विस्मृति हो जाना ही क्या कहलाता है, अज्ञान कहलाता। जैसे वह सच्चित आनंद रूप है, लेकिन आनंद रूप की विस्मृति हो गई, सत्ता की विस्मृति नहीं हुई, चित्त की विस्मृति नहीं हुई। मैं हूं ये तो सभी कहते हैं, लेकिन मैं सुखरूप हूं ये कहने में असमर्थ। तो विस्मृति कितने अंश में, एक अंश। जैसे सूर्य जो है पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, सूर्य को क्या मानते हो, सूर्य रूपी ग्रह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, और ये भी मानते हो कि पृथ्वी इसका चक्कर लगाती, लेकिन चक्कर लगाते समय, और अंडाकार भी उसे स्वीकार करते हो, चक्कर लगाते समय जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सम्मुख होता है, तो उसे क्या कहते हो, का दिन, प्रकाशमय, और जो भाग उसका पृष्ठता में चला जाता है तो उसे क्या कहते हो? रात्रि कहते हो। और इसके लिए आप तर्क भी दे देते हो कि भाई आज भारत में दिन है लेकिन अमेरिका में रात्रि है, तो क्यों? अमेरिका भी पृथ्वी पर ही तो विद्यमान है, तो पृथ्वी का भाग उस समय अमेरिका का पृष्ठ भाग में पड़ रहा है इसलिए अंधकार है, और भारत का जो है सम्मुख पड़ रहा है इसलिए वहां दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अंधकार नाम की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, यही तो कहोगे, लेकिन सम्मुखता और विमुखता का केवल रूप है। लेकिन फिर भी सूर्य का अभाव नहीं है और भारत में रात्रि हो गई तो वहां दिन, क्योंकि सूर्य के बगैर प्रकाश तो हो नहीं सकता। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि सूर्य का प्रकाश तो है लेकिन सम्मुखता विमुखता की बात है, विमुखता में ही अंधकार की प्रतीति होती है और जहां विमुखता नहीं होती है वहां अंधकार की प्रतीति नहीं होती। संकेत किया। इसलिए रामायण में आप लोग पढ़ते हो क्या, सन्मुख होय जीव मोय जब ही है, जन्म कोटि अघ नासे तब। जो पृथ्वी का भाग सूर्य के सामने आ जाएगा तो क्या वह अंधकार रहेगा? ऐसे ही जहां पर ये जीव जो अपने को मैं करके जीव रूप से स्वीकार करने वाला है और वो भी सूर्य रूपी आत्मा के सम्मुख जब हो जाता है, उधर उसकी दृष्टि हो जाती है, तो वहां पर भी अज्ञान नाम की चीज नहीं रहती है। संकेत। लेकिन जब तक उसकी सम्मुखता पूर्ण नहीं, कहीं ना कहीं विस्मृति बैठी है, तब तक ये जीव भाव रहता। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, यद्यपि अंधकार और प्रकाश दोनों का कभी भी संयोग संबंध संभव है ही नहीं। क्या नहीं है? मिलना संभव नहीं है, संयोग संबंध नहीं है। माने दो पदार्थ सत्ता वाले हों तभी उनका संयोग संबंध हो सकता है, और एक पदार्थ सत्ता वाला एक पदार्थ की सत्ता नहीं है तो संयोग होगा क्या? तो संयोग संबंध नहीं हो। और संयोग संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं? मिलना, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो मिले हुए हैं तब ये कहा जाए तो कैसे? एक की सत्ता एक की सत्ता नहीं, तो मिलना कैसा है? तो कहा वो तादात्म्य रूप। तादात्म्य मतलब अज्ञान से वो माना हुआ। अज्ञान क्या है? तो भ्रांति कहें, अज्ञान कहें, माया कहें, प्रकृति कहें, कल्पना कहें, कुछ भी कहें। तो इससे जो है वो क्या हुआ है? तो कहने लगे वो संबंध वाला मिला हुआ सा प्रतीत